बाहर वर्षा की झड़ी लगी हुई है। क्यों? क्योंकि सावन का महीना चल रहा है। तो सावन के महीने में एक तो वर्षा की झड़ी लगी रहती है और दूसरा सावन के मास से त्योहारों की शुरुआत भी हो जाती है। एक के बाद एक त्योहार आते ही रहते हैं और हमारे हर त्योहार में कोई न कोई जो रिचुअल्स हम करते हैं, जो रस्में होती है, जो रीति रिवाज होते हैं, उनमें कोई न कोई आध्यात्मिक संदेश छिपा हुआ होता है। और ये जो आज कॉन्फ्रेंस में हम आए हैं, इस उसका जो थीम है, हम पढ़ रहे थे सनातन संस्कृति का आधार अध्यात्म है। तो अवश्य ही जब हम ब्रह्मा कुमारी के इस ज्ञान सरोवर कैंपस में इस कार्यक्रम में पधारे हैं तो अध्यात्म की गहराइयों को समझने के लिए ही पधारे हैं। और जैसे कहा कि आज का विषय है मैं कौन हूं, तो अवश्य इसके उत्तर में कोई न कोई आध्यात्मिक पहलू होगा, तभी इस विषय को यहां रखा गया है। क्योंकि मैं कौन हूं, इस प्रश्न का उत्तर अगर आप एक एक से पूछा जाए तो सभी बहुत फटाफट इसका आंसर दे सकते हैं। हाँ, बचपन से लेकर ही हमें सिखाया जाता है कि हम कौन हैं। तो इतने बड़े होने के बाद क्या हमसे कोई पूछे मैं कौन हूं तो क्या हम उत्तर नहीं दे सकते हैं? क्या दे सकते हैं? परंतु फिर यहां पर हम मैं कौन हूं समझने के लिए क्यों इतना आकर के बैठे हैं? अवश्य हर चीज के दो पहलू होते हैं। एक पहलू होता है, हाँ, विशेष करके जीवन को अगर हम समझें तो जीवन के दो पहलू हैं। एक है भौतिक और एक है अभौतिक, जिसको ही कहेंगे आध्यात्मिक। जैसे कहा ना, सावन का मास है, वर्षा की झड़ी लगी हुई है, तो साथ साथ त्योहारों की भी झड़ी लग जाती है। और इन त्योहारों में हम देखते हैं नारियल का बहुत बड़ा महत्व होता है। नारियल नाम अपने आप में दो, अगर इसको संधि विच्छेद करें तो एक शब्द आएगा ना और दूसरा शब्द आएगा रियल। इस ना का अर्थ होता है, अगर एक एक शब्द को देखें तो ना माना नहीं, और रियल को अगर अंग्रेजी शब्द मान ले जिसको आर ई ए एल कहते हैं रियल, तो रियल माना सत्य। तो नारियल मतलब क्या हुआ कि इस नारियल में दो चीजें हैं, एक जो सत्य नहीं है और एक जो सत्य है, या जिसको हम कहें कि एक जो सेवन करने योग्य है और एक जो सेवन करने योग्य नहीं है। सभी ने देखा है ना नारियल, सावन के मास में मंदिरों में भी जाना आरंभ हो जाता है। हाँ, मंदिरों में विशेष करके नारियल ही फोड़े जाते हैं। तो नारियल बाहर से कैसा है? बहुत हार्ड है, उसमें वो अंग्रेजी शब्द कहेंगे तो हेयर्स हैं, बाल हैं, उससे ढका हुआ है। तो बाहर से हार्ड है, हेयरी है, लेकिन अंदर से कुछ और रूप है। बचपन में हम पहेलियां खेला करते थे और उस पहेली में एक पहेली होती थी, अटोरा कटोरा बेटा बाप से भी गोरा। कहते थे ऐसे, बताओ वो कौन है। क्या उत्तर आता था इस पहेली का? हाँ, अटोरा कटोरा बेटा बाप से भी गोरा। ये पहेली बचपन में हम खूब खेलते थे। इस पहेली के उत्तर में आंसर क्या आता है? नारियल। कि बाहर से कटोरे जैसे वो ढक्कन तोड़ने पर दिखाई पड़ते हैं और अंदर में वो गिरी जो बहुत क्या होती है, सफेद होती है, और वो गिरी उसके अंदर पानी भी होता है, यही सेवन योग्य होता है। लेकिन बाहर वाला जो हार्ड कटोरी के रूप में बाहर अलग हो जाता है, वो सेवन योग्य नहीं होता है। तो दो पहलू हो गए ना नारियल के भी, एक बाह्य पहलू जो सेवन करने योग्य नहीं है, और एक आंतरिक पहलू जो सेवन करने योग्य है। लेकिन ये दोनों साथ है तो नारियल है। ऐसे ही जीवन के भी दो पहलू है। एक ये भौतिक शरीर जो आंखों से दिखाई पड़ता है, जिसे स्पर्श से अनुभव किया जा सकता है, और एक दूसरा पहलू है इस जीवन का जो आंखों से दिखाई नहीं पड़ता है, जिसे स्पर्श से, भौतिक स्पर्श किया ही नहीं जा सकता है। कौन सा है वो दूसरा पहलू? आप सभी ज्ञानी जन बैठे हैं यहां, कौन सा है वो दो पहलू, दूसरा पहलू? एक तो ये 5 फुट लंबा चौड़ा शरीर, और दूसरा आत्मा। तो जीवन के ये दो पहलू हैं, एक शरीर और एक आत्मा। ये जब अकेले अकेले हैं तो इनकी इतनी इम्पोर्टेंस नहीं है। हाँ, जैसे एक शरीर है और उसमें आत्मा है तो जीवन है। लेकिन जब हम कहते हैं कि फलाने की डेथ हो गई, ये कहने से हमारा क्या तात्पर्य होता है? कि शरीर में से आत्मा निकल चुकी है। तो वो शरीर जो अब बिना आत्मा के है, उसकी इम्पोर्टेंस खत्म, और इसलिए उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। और वो आत्मा जिसके निकलने के कारण शरीर अकेला पड़ गया और उसका अंतिम संस्कार किया गया, अब आत्मा भी तो बिना शरीर के अकेली पड़ गई, और इसलिए फिर कहते हैं कि शरीर जो बिना आत्मा का था अंतिम संस्कार किया गया, लेकिन अब आत्मा जो बिना शरीर की हो गई है, वापस उसको अपनी अगली यात्रा में नया शरीर मिले, सुखद जीवन मिले, उसके लिए प्रार्थना सभा, शांति का योगदान होता है ऐसा। तो दोनों साथ है तो जीवन है, दोनों अलग है तो जीवन नहीं है। और इसलिए जीवन के इन दोनों पहलुओं को समझना बहुत जरूरी है, एक भौतिक पहलू और दूसरा आध्यात्मिक पहलू। भौतिक पहलू में है हमारा शरीर, आध्यात्मिक पहलू में है हमारी, हम आत्मा। कौन सा वाक्य सही है, मैं आत्मा या मेरी आत्मा? क्या कहेंगे, मैं आत्मा या मेरी आत्मा? हाँ, मैं आत्मा, मैं शरीर या मेरा शरीर? हाँ, मेरा शरीर। शरीर के लिए मैं शरीर उचित नहीं है, क्या राइट है शरीर के लिए? मेरा शरीर। और आत्मा के लिए क्या राइट है? मेरी आत्मा नहीं, लेकिन मैं आत्मा। तो स्पष्ट है, एक है मैं और एक है मेरा। तो इन दोनों में स्वामी कौन हो गया? स्वामी कौन होता है, मेरा या मैं? मैं। तो मैं हूं स्वामी इस शरीर की। मैं आत्मा हूं, मैं स्वामी हूं इस शरीर की, मैं मालिक हूं इस शरीर की, मैं मास्टर हूं इस शरीर की, मैं कंट्रोलर हूं इस शरीर की। क्या हम इस जागृति के साथ जीवन जीते हैं? जीते हैं इस जागृति के साथ? नहीं, हम अपना मालिकपन खो चुके हैं, हम अपना कंट्रोल इस पर से खो चुके हैं, हम इसके परवश हो चुके हैं। कहां से पता चलता है हम इस शरीर के परवश हो चुके हैं? आए दिन हमारे मुख से ये शब्द निकलते रहते हैं, मैं बोलना तो नहीं चाहता था पर मेरे मुख से निकल गए ये शब्द। मैं देखना तो नहीं चाहता था पर मेरी आंखों ने वो देख लिया। मैं सुनना तो नहीं चाहता था किसकी निंदा पर मेरे कानों ने सुन लिया। कहते हैं नहीं सो कहते हैं। मैं खाना तो नहीं चाहता था मीठा पर मेरी जीभा ने खा लिया। कहते हैं नहीं कहते हैं। इसका मतलब इन शरीर के अंगों के, इंद्रियों के, मैं आत्मा जो मालिक हूं परवश हो चुकी हूं या नहीं हो चुकी हूं? हुए है ना। और इसी परवशता ने आज हमारे जीवन की सफरिंग्स को, हमारे दुख दर्द को बढ़ाया है। और इसलिए एक एक का दुख दर्द मिला के पूरा विश्व आज दुख दर्द से भरा हुआ है। जबकि सच्चाई ये है कि विश्व, जिसके लिए कहते हैं ये वर्ल्ड ड्रामा स्टेज है, और इस वर्ल्ड ड्रामा स्टेज पर जब ड्रामा आरंभ हुआ, उस आरंभ के सीन में, जीवन में दुख दर्द नाम का कोई निशान नहीं था, कोई नाम निशान नहीं था दुख दर्द का। कैसे पता चलता है कि एक समय ऐसा था? हम गाते हैं, जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती थी बसेरा, वो भारत देश है मेरा। एक समय था जहां दुख दर्द इस धरती पर नहीं था, जहां अशांति नहीं थी, जहां घृणा नहीं थी, नफरत नहीं थी, ईर्ष्या नहीं थी, द्वेष नहीं था, वैर विरोध नहीं था, बदले की भावना नहीं थी। लेकिन आज एक समय आ गया है जहां इन सभी नकारात्मक विचारों से, इन सभी नकारात्मक फीलिंग्स से, इन नकारात्मक संस्कारों से मनुष्य का जीवन भरा हुआ है। चाहते हुए भी इनसे छूट नहीं पा रहे हैं, परतंत्र हो गए हैं, अपनी सच्ची स्वतंत्रता खो चुके हैं। उसी स्वतंत्रता को पाने के लिए आत्मा भीतर छटपटा रही है और उसी छटपटाहट से मुक्त होने के लिए आत्मा कुछ 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 कर रही है जिससे मुझे इससे राहत मिल जाए। लेकिन हम जो कुछ कर रहे हैं, जीवन का जो बाह्य पहलू है, शरीर, सिर्फ और सिर्फ उस पर फोकस करके कर रहे हैं। लेकिन जो जीवन का आंतरिक पहलू है, आत्मा, उस पर से हमारा फोकस बिल्कुल हट चुका है और उस पर हमारा फोकस हमें फिर से जमाना है। इसीलिए उसको अच्छी से जानना है और इसीलिए कहा मैं कौन हूं, उसे समझना है। शारीरिक रीति से मैं कौन हूं, उसका उत्तर आप फटाफट बताएंगे, लेकिन आंतरिक रीति से, आध्यात्मिक रीति से मैं कौन हूं, उसका भी उत्तर आपने बताया जरूर कि आत्मा, पर इसकी डिटेल नहीं पता है। और चूंकि डिटेल नहीं पता है तो फिर उस डिटेल के अनुसार जी भी नहीं पा रहे हैं, उस पर फोकस भी नहीं कर पा रहे हैं। और इसीलिए आज का ये विषय है कि हम जाने मैं कौन हूं। ये जो हम जानते हैं शारीरिक रीति से और इसके स्मृति में जो हम रहते हैं, इसको कहते हैं देह अभिमान। क्यों? क्योंकि संसार में आत्मा कहां से आई? देखो, कहते हैं ना, एक दिन जहां से आए हैं वहां पर वापस चले जाना है, कहते हैं ऐसा। ये दुनिया एक मुसाफिर खाना है। तो कहां से आए हैं, कहां जाना है, ये अभी भी प्रश्न बना हुआ है। क्यों आए हैं, क्या करना है, अभी भी प्रश्न बना हुआ है। आए थे तो क्या लेकर आए थे, अभी भी प्रश्न बना हुआ है। हम जो आए हैं वो कैसे हैं हम, वो भी प्रश्न है। तो इन्हीं प्रश्नों का उत्तर पाने के लिए ये आज का सत्र है, मैं कौन हूं। तो जब हम आए थे इस दुनिया में, कहां से आए थे, तो कहा भगवान के घर से आए थे, कहते हैं ना इसे, भगवान के घर से आए थे। और जब इस वर्ल्ड ड्रामा में आए, और ड्रामा माना ही क्या, कि जहां पर एक्टर अपनी एक्ट करने के लिए आएगा, और जब भी एक्टर घर से रंगमंच पर आएगा ड्रामा के स्टेज पर अपनी एक्टिंग करने के लिए, तो क्या करता है? सबसे पहले एक्टिंग के लिए एक्टिंग वाला वस्त्र पहन लेता है। तो ठीक इस तरह से हम आत्माएं भी भगवान के घर से यहां आए हैं एक एक्टर के रूप में। कहते हैं ना, शेक्सपियर ने कहा है कि ये वर्ल्ड ड्रामा स्टेज है और हम सभी इसके एक्टर्स हैं। तो हम एक्टर के रूप में यहां आए हैं, और यहां पर एक्टिंग करने से पहले एक्टिंग के लिए वस्त्र धारण करते हैं, और वो है शरीर रूपी वस्त्र, जिसको कहा मां के गर्भ में आत्मा प्रवेश करके देह को धारण करती है, और उस देह से बाहर आकर इस वर्ल्ड ड्रामा स्टेज पर अपनी एक्टिंग आरंभ करती है। तो ये जो देह धारण किया, इसको कहा जाता है मेरा शरीर, मेरी देह। और जिस मां बाप ने जन्म दिया इस देह को, उसको कहते हैं मेरी मां, मेरे पिताजी। और उस घर में अन्य सदस्य पहले से जन्मे हुए, तो कहा मेरा भाई, मेरी बहन, मेरे मामा, मेरे चाचा, मेरी मामी, मेरी काकी, मेरी बुआ, मेरे पुफाजी, ये सब मेरे मेरे मेरे, मैं इनसे अलग। और इन्होंने ही सबने मिलकर इस देह को फिर नाम दिया था, है ना? डिसाइड किया जाता है ना कि बच्चा जो घर में आया है उसको नाम किया दिया जाए, और जो नाम दिया गया उसको कहा मेरा नाम। और इन्होंने ही मिलकर फिर सब हमको एक दिन स्कूल में भेजा, तो कहा मेरी स्कूल, मेरी टीचर। फिर स्कूल में पढ़ाई पढ़ते पढ़ते क्वालिफाइड हुए, तो कहा मेरी क्वालिफिकेशन। फिर इस क्वालिफिकेशन के आधार से, योग्यताओं के आधार से, या तो बिजनेस किया या तो जॉब की, तो कहा मेरी नौकरी, मेरा धंधा, मेरा व्यापार, मेरा व्यवसाय, मेरी जॉब। फिर वहां पर मेरा एक ओहदा रहा, मैं इस दुकान का प्रोप्राइटर हूं, मालिक हूं, मैं इस कंपनी का मैनेजर हूं। और एक दिन वो भी आया, वर्षों बीत गए, उस काम से, उस जॉब से रिटायर हो गए, उस जॉब पर, उस काम पर दूसरे ने आके स्थान ग्रहण कर लिया, हो गए एक्स, हो गए एक्स, एक्स व्यापारी, एक्स डॉक्टर, कहते हैं ऐसा। तो अब कुछ भी नहीं है हम, अब कुछ भी नहीं है हम, है या नहीं है? जब कहा एक्स व्यापारी, एक्स डॉक्टर, तब भी हम है या नहीं है? तब भी हम हैं, लेकिन ये जो अक्वायर वाला था, जो प्राप्त किया था, वो चला गया। तो जो भी हम इस जीवन में प्राप्त करते हैं, क्या वो हमारे साथ सदा रहेगा? भौतिक रीति से जो भी हमने प्राप्त किया वो सदा हमारे साथ होगा? क्या कहते हैं, जीवन को ही नश्वर कहते हैं? तो इस नश्वर जीवन में जो, क्योंकि जीवन को नश्वर कहते हैं मतलब ये जीवन तब बनता है जब आत्मा देह धारण करती है, और जब कहा जीवन नश्वर है मतलब ये देह नश्वर है, नाशवंत है, ये अविनाशी नहीं है, ये टेम्पररी है, ये परमानेंट नहीं है, ये सदा काल के लिए नहीं है, ये अल्प काल के लिए है। तो कुछ भी जो हम प्राप्त करते हैं इस जीवन में वो सब कुछ अल्प काल के लिए है, लेकिन जो सदा काल के लिए है हम उसको सदा के लिए भुलाए बैठे हैं, और जो अल्प काल के लिए है हमारी कॉन्शियस उसके प्रति इतनी जबरदस्त, इतनी स्ट्रांग बनी हुई है मानो ये सदा हमारे साथ होंगे। ये शरीर एक दिन जिसको माँ बाप ने जन्म दिया, क्या ये सदा रहेगा? नहीं। और इसलिए इस शरीर के द्वारा जो प्राप्त किया वो भी सदा नहीं रहता है, लेकिन जिस आत्मा ने ये शरीर धारण किया जब हम उसको भुला बैठते हैं तब हम इस शरीर को भी मैं कहना आरंभ कर देते हैं। इसीलिए देखो, दर्पण के सामने जब जाते हैं, शीशे के सामने जब जाते हैं, उसकी छवि जब हमें दिखाई पड़ती है तो उसको देखकर हम क्या कहते हैं? ये मैं हूं कहते हैं या नहीं कहते हैं? कहते हैं मैं हूं, ये कहते हैं। लेकिन शीशे से हट जाने के बाद, समझो मुझे भूख लगी है और किचन में भोजन बनने के लिए काफी टाइम है, भूख सही नहीं जा रही है, कुछ तो चाहिए खाने के लिए, फ्रिज खोलते हैं, एप्पल दिखाई पड़ा, निकाला, हाथ में रखा, चाकू उठाया, काटा, गलती से चाकू उंगली को भी लग गया, तब हम क्या कहेंगे, मैं उंगली कटी या मेरी उंगली कटी? तब हम क्या कहेंगे, मैं उंगली कटी या मेरी उंगली कटी? मेरी उंगली कटी। शीशे के सामने इसको क्या कहा था? मैं कहा था। तो कभी हम इसको मैं बोलते हैं, कभी हम इसको मेरा बोलते हैं, जबकि हम ये बहुत स्पष्ट है मैं और मेरा दोनों अलग अलग अस्तित्व है। ये मेरा रुमाल या मैं रुमाल, ये मेरा रुमाल या मैं रुमाल, मेरा रुमाल। जो कह रहा है मेरा रुमाल उसका अस्तित्व अलग है, रुमाल का अस्तित्व अलग है, अर्थात मैं अलग होता है और मेरा अलग होता है, लेकिन हम इसको ही मैं बोल रहे हैं, इसको ही मेरा बोल रहे हैं, मतलब कुछ गलती कर रहे हैं, कुछ गलती कर रहे हैं। इसी गलती को सुधारने का नाम है अध्यात्म। अध्यात्म स्पष्ट करके बताता है, रियलाइज कराता है कि शरीर अलग चीज है और इस शरीर को चलाने वाली जो शक्ति है जिसको कहा आत्मा वो अलग चीज है। हमारा सारा फोकस बॉडी पर है और इस बॉडी से जो जो अक्वायर किया, जो जो हासिल किया, जो जो अचीव किया, जो जो प्राप्त किया, सारा फोकस उस पर है। इसको कहा जाता है बॉडी कॉन्शियसनेस, देह अभिमान। और इसी देह अभिमान ने, जिसको अंग्रेजी शब्द देते हैं ईगो, इसी ईगो ने जीवन को कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है। इसी ईगो ने सफरिंग्स क्रिएट की है, इसी ईगो ने दुख दर्द क्रिएट किया है। और जरूरत है सफरिंग्स की जड़ को खत्म जब तक नहीं करेंगे तो हम अपनी सफरिंग से, हम अपने दुख दर्द से कभी भी मुक्त नहीं हो सकेंगे। और अध्यात्म के लिए जब मनुष्य कदम बढ़ाता है तो उसका वही लक्ष्य होता है कि जीवन कैसा हो जाए, हर प्रकार की सफरिंग से मुक्त हो जाए। और इसलिए उस आत्मा पर अब अपना फोकस शिफ्ट करने की जरूरत है। लेकिन पता तो हो वो कैसी होती है आत्मा, वरना शिफ्ट भी करे तो कहां करे। और इसीलिए उस आत्मा को समझना है। तो अभी तक जो शरीर के बारे में, उसको भी हम कहते हैं मैं कौन हूं, लेकिन वो अक्वायर्ड सेल्फ है। जो जो हासिल किया उसके आधार से मैंने कहा मैं, जो कि गलत है, वो मेरा है, वो मैं नहीं है। हम कहने को कहते हैं मैं डॉक्टर हूं, परंतु वास्तव में मैं डॉक्टर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं जिसने डॉक्टर की क्वालिफिकेशन हासिल की है। आप कह सकते हैं कि इसमें अंतर क्या है। अंतर यह है कि जब मैं डॉक्टर हूं कहती हूं तो मेरा फोकस सिर्फ डॉक्टर पर है, लेकिन जब मैं कहती हूं कि मैंने डॉक्टर की क्वालिफिकेशन हासिल की है तो हासिल करने वाली जो आत्मा है मेरा फोकस उस पर है। फर्क दिखाई पड़ता है, फर्क दिखाई पड़ता है। जब मैं कहती हूं मैं मां हूं और जब मैं कहती हूं मैंने मां का रोल लिया है या प्राप्त किया है, अंतर है इसमें। जब मैं मां हूं कहती हूं तो पूरा मां ही समझ लेती हूं अपने आप को, लेकिन जब मैं आत्मा ने मां के रोल में पार्ट प्ले बजा रही हूं, ये अटेंशन में है, तो मतलब मेरा अटेंशन आत्मा पर है, मेरा फोकस आत्मा पर है। और आत्मा पर फोकस होना माना फिर उसका मतलब ये है आत्मा की जो क्वालिटीज है उसको अपने एक्ट में रेडिएट करना। जैसे हाथ में अगर एक फूल होगा तो हाथ में भी खुशबू आएगी और उस फूल से निकलकर चारों तरफ भी फैलेगी या नहीं फैलेगी, फैलेगी या नहीं फैलेगी। ऐसे ही जब अटेंशन होगा आत्मा पर तो मैं स्वयं उसकी जो खुशबू है उसको अनुभव करूंगी और इस रंगमंच पर जो जो पार्ट प्ले कर रही हूं, पार्ट प्ले करते समय उस खुशबू को भी उस पार्ट में फैला दूंगी। ये जरूरत है और उसके लिए ही आत्मा को समझना है। क्यों? क्योंकि कहते हैं ना सभी, बहन जी मैं नहीं चाहता हूं कि गुस्सा करूं, लेकिन गुस्सा आ जाता है। मैं क्या चाहता हूं? मैं चाहता हूं शांतिपूर्वक सब कुछ करूं, लेकिन नहीं चाहते हुए भी शांति से नहीं कर पाता हूँ, गुस्सा आ जाता है। मैं नहीं चाहता हूँ कि किसी से घृणा करूँ, नफरत करूँ। मैं तो चाहता हूँ कि सबके साथ में प्रेम से चलूँ, पर क्या करूँ, वो प्रेम नहीं, वो घृणा आ जाती है। कहते हैं हम ऐसे? ये हमारी परवशता, ये हमारी गुलामी। हमने अपनी आजादी खो दी है, हमने अपनी स्वतंत्रता खो दी है। मैं चाहता हूं पर नहीं कर पाता हूं। तो वापस आजादी प्राप्त करने के लिए, एक स्वतंत्रता की फीलिंग के लिए, क्योंकि स्वतंत्रता अपने आप में एक बहुत सुंदर फीलिंग है, उस स्वतंत्र फीलिंग के साथ मुझ स्व आत्मा में जो क्वालिटीज है, जो खुशबू है गुणों की, मैं उसको बिखेर सकती हूं। तो बात शुरुआत की थी, जीवन के दो पहलू हैं, एक पहलू भौतिक, एक पहलू आध्यात्मिक। जो पहलू भौतिक है उसको कहते हैं अक्वायर्ड सेल्फ। अक्वायर माना हासिल करना, प्राप्त करना, ये हमने प्राप्त किया है। और जो आध्यात्मिक पहलू है उसे कहते हैं इनेट सेल्फ। मैं हूं, ये मैंने प्राप्त नहीं किया है, ये मैं हूं। अक्वायर्ड सेल्फ, ये मैंने प्राप्त किया है, ये मेरा है। और इनेट सेल्फ, ये मैं हूं, ये मुझ में है, ये मेरे में है, मैं हूं ही ये। तो अक्वायर्ड सेल्फ में सबसे पहले देह है और उसके बाद बहुत सब कुछ। यूनिवर्सल नीड ऑफ दिस बॉडी क्या है? इस बॉडी की यूनिवर्सली नीड क्या है? यूनिवर्सली मतलब दुनिया के हर कोने में रहो, किसी भी कोने में रहो, लेकिन अगर आपके पास ये मनुष्य शरीर है, उसकी नीड क्या होती है मनुष्य शरीर की, चाहे वो अमेरिका में हो चाहे वो अफ्रीका में हो, उसकी नीड क्या होगी शरीर की, जरूरत, ये क्या चाहता है? जिससे ये बना हुआ है वो यही चाहेगा। कहते हैं ना, ये माटी का पुतला है, एक माटी में मिल जाएगा एक दिन, बोलते हैं नहीं बोलते हैं? तो कहने में माटी का पुतला आता है, क्यों? क्योंकि धरती मां ने इसको तैयार किया है। और धरती मां ने इसे किससे तैयार किया है? पांच तत्वों से तैयार किया है। कौन से है वो पांच तत्व? कौन से वो पांच तत्व? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। और इसीलिए इन पांचों की डिमांड होती है शरीर को। प्यास लगेगी तो पानी देंगे, भूख लगेगी तो मिट्टी से बना है ना, भूख लगना माना मिट्टी की रिक्वायरमेंट, तो मिट्टी से बना अनाज, पैदा हुआ अनाज, फल, फ्रूट, सब्जियां, इसको देते हैं। और कमरे में बंद है, नो वेंटिलेशन, क्या होगा? सांस लेने में दिक्कत, डिमांड करेगा दरवाजे खिड़की खोलो, वायु चाहिए। ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल 98.4 समथिंग, लेकिन टेम्परेचर उससे ज्यादा हो रहा है, शरीर डिमांड हो रही है एसी चालू कर दो। शीत की लहर बहुत कड़क, टेम्परेचर डाउन, डिमांड हो रही है हीटर चला दो। खाना खा लिए जबरदस्त पेट से लेके यहां तक, हाय रे फंस गया, स्पेस ही नहीं छोड़ा कुछ। मिक्सर में जार में पूरा फुल भर दिया, घूमेगा अभी? जबकि मिक्सर का पर्पस क्या था, घुमाना है, पर जार इतना फुलफिल कर दिया कि अब घूम ही नहीं रहा है। स्पेस का महत्व है। शरीर के ऑर्गन्स मूवमेंट कर सके उसके लिए स्पेस भी है इसके अंदर, और उस स्पेस को जब हम भर देते हैं तो हिलना डुलना मुश्किल हो जाता है। तो शरीर पांच तत्वों से बना है, पांच तत्वों की डिमांड डिजायर चाहिए की रट लगती है। जब जब इसको लगता है इन पांचों का बैलेंस कहीं ना कहीं गड़बड़ा रहा है। तो ये भौतिक पहलू के आधार से चाहिए चाहिए है, लेकिन दूसरा भी कुछ चाहिए चाहिए है इस संसार में या नहीं, कि सिर्फ यही है चाहिए? दूसरा भी कुछ चाहिए चाहिए है हमारे जीवन में, कि बस इस पांच की ही चाहिए चाहिए है? बोलो, और कौन सी बात के लिए हमारी चाहिए चाहिए की रट लगी हुई है, डिमांड है, डिजायर है? सुख चाहिए, शांति चाहिए, प्यार चाहिए, खुशी चाहिए, आनंद चाहिए, शुद्धि चाहिए, शक्ति चाहिए, ज्ञान चाहिए। है ये डिमांड? है ये डिमांड? कॉलेजों में, स्कूलों में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में बहुत सारी किताबें पढ़ ली हैं, फिर भी रट लगी है मुझे सच्चा ज्ञान चाहिए। इतना तो ज्ञान अक्वायर कर लिया, लेकिन सच्चा ज्ञान, और सच्चा ज्ञान का मतलब ही है कि जो मैं आत्मा हूं, उस आत्मा से संबंधित ज्ञान। भौतिक पहलू वाला ज्ञान तो बहुत हो गया है, पर उससे जीवन की गुत्थी नहीं सुलझ रही है, और ही बढ़ती जा रही है, और इसलिए मुझे सच्चा ज्ञान चाहिए। अर्थात इस जीवन को चलाने वाली जो ड्राइविंग शक्ति है, जो ड्राइविंग फोर्स है, कि जिसके बिना ये शरीर जिंदा नहीं, डेड डिक्लेयर हो जाता है, उसके प्रति मुझे समझ चाहिए। है ये डिमांड? उसी डिमांड ने तो यहां तक पहुंचा दिया, उसी डिजायर ने तो यहां तक पहुंचा दिया, उसी डिजायर ने तो आपको यहां पे एकाग्र चित करके बैठा है कि जाने तो सही हम हैं कौन। तो वो आत्मा कि ये जो डिजायर है, जिसे शरीर की पांच एलिमेंट से बनावट है, मैन्युफैक्चरिंग कंपोनेंट एलिमेंट फाइव एलिमेंट्स हैं, तो उन पांच की डिमांड, ऐसे आत्मा जो है वो अपने आप में सेवन क्वालिटीज का एक पुंज है, और इसलिए वो डिजायर उठती है, यही सेवन क्वालिटीज। रिपीट करें, बोलो आपको क्या चाहिए, बोलो। ये जो अभी हमने सेवन क्वालिटीज, क्योंकि ये चाहिए हमें, पर कैसे मिलेगा उसके भी मेथड सीखेंगे, लेकिन पहले मालूम तो याद तो रहे, इसलिए बोलो, शुरुआत करो। शांति, शक्ति, शुद्धि, याद करने का सिंपल तरीका, श श श, शांति शक्ति शुद्धि, ठीक है। फिर एक शब्द आता है जो कहते हैं सच्चित आनंद, कहते हैं सच्चित आनंद। सत माना सत्य, सत्य में सुख है असत्य में दुख है कहते हैं, तो सुख। चित माना चैतन्य, चैतन्य माना ज्ञान, ज्ञान और आनंद। सत चित आनंद से तीन याद कर लो, सुख या खुशी, ज्ञान और आनंद। हो गए छह, छह हो गए। सातवां प्रेम। ये सेवन क्वालिटीज हैं आत्मा की और उसी की चाहिए चाहिए की रट लगी हुई है। तो जब आत्मा ही अपने आप में सेवन क्वालिटीज का पुंज है तो अनुभव होना चाहिए ना, क्यों चाहिए चाहिए की रट लगी है? क्योंकि अक्वायर्ड सेल्फ जो है उसको उसने उस आत्मा को कवर कर दिया है। अक्वायर्ड सेल्फ ने इनेट सेल्फ को कवर कर दिया है और उस कवर के अंदर जो अभी आत्मा इनेट सेल्फ है हमने उसको भुला दिया है। अक्वायर्ड सेल्फ के लेयर्स 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 चढ़ते गए। मैं डॉक्टर हूं, मैं भारतीय हूं, मैं हिंदू हूं, मैं लड़का हूं, मैं लड़की हूं, मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, मैं नौकरी वाला हूं, मैं व्यापार वाला हूं। ये सब अक्वायर्ड लेयर्स उसके ऊपर चढ़ गए। तभी कहा ना, क्या अंतर है इस कहने में कि मैं डॉक्टर हूं, और एक है कहना मैं डॉक्टर हूं और एक है कहना मैं आत्मा हूं, डॉक्टर का रोल मिला है, अंतर है। ये ले जब मैं डॉक्टर हूं कहता हूं, मैं इनेट सेल्फ को और कवर करते जा रहा हूं। लेकिन जब मैं कहता हूं मैं डॉक्टर हूं, मैं आत्मा हूं, डॉक्टर के रोल में हूं, इस इनेट सेल्फ को कवर होने से बचा रहा हूं। और जब इसको कवर होने से बचाएंगे अर्थात इसको बाहर आने की स्वतंत्रता प्रदान कर रहे हैं हम, और जब इसको बाहर आने की स्वतंत्रता प्रदान करें तो ये जो सेवन क्वालिटीज का पुंज है, तो इस सेवन क्वालिटीज को बिखरने का अवसर मिले, तो उसको हम अनुभव करें। और इसीलिए कहा सावन के मास में मंदिरों में भीड़ लगती है, त्योहार के ऊपर त्योहार होते हैं, नारियल फोड़े जाते हैं। नारियल बहुत बड़ा ये जो रिचुअल रखा गया है, ये अध्यात्म की ओर एक संदेश देता है कि जब तक नारियल नहीं तोड़ा जाता है शुभ नहीं माना जाता, अर्थात शुभ कार्य करने हैं तो नारियल तोड़ो, अर्थात जो रियल वाला हिस्सा नहीं है उसके अंदर जो रियल वाला हिस्सा बंद है उससे उसको मुक्त करो, उस अनरियल वाले हिस्से को तोड़ो तो रियल वाला बाहर आए, तो रियल वाले को आप टेस्ट कर सको। तो अध्यात्म मैं कौन हूं ये समझने के लिए इसीलिए कह रहा है कि जब आप रियल को समझेंगे तब आपको पता चलेगा मुझे इस अनरियल को तोड़ना है, अर्थात उस कॉन्शियस से अपने आप को परे रख के रियल के कॉन्शियस में रहकर, रियल की स्मृति में रहकर मुझे जीवन का हर कर्म करना है। और उस रियल की स्मृति में रहकर जब हम कर्म करते हैं उसको कहते हैं सोल कॉन्शियस वाली जीवन। पहले थी हमारी बॉडी कॉन्शियस वाली जीवन, रोल कॉन्शियस वाली जीवन, लेकिन अध्यात्म से जब हमारे को रियलिटी से हमारी मुलाकात हो जाती है, तब हमारी यात्रा शुरू हो जाती है सोल कॉन्शियस वाली, आत्मस्मृति वाली। इसीलिए गीत सुना था, आत्मचिंतन से ही होगा आत्म परिवर्तन। लेकिन आत्मचिंतन तो तब करेंगे ना जब आत्मा का पता हो। तो मैं आत्मा, सेवन क्वालिटीज का पुंज, लेकिन अक्वायर्ड सेल्फ ने उसको ढक दिया है, उसको मुझे तोड़। नारियल को तोड़ने की भी एक ट्रिक होती है, ट्रिक होती है, ट्रिक जिनके पास होती है यूं फटाफट तोड़ते हैं, जिनके पास ट्रिक नहीं होती है वो तोड़ते ही रहते, टूटता नहीं है। तो यहां पर भी ट्रिक है कि अपना ध्यान भौतिक देह और इस भौतिक देह के आधार से जो भी हासिल किया है वहां से हटाकर वो आत्मा जिसने हासिल किया है उस पर ध्यान केंद्रित करना। तो उस पर ध्यान केंद्रित करे तो उसका रूप रंग तो पता हो मुझे क्या है। तो क्या है रूप रंग आत्मा का, क्या है साइज आत्मा की? इस देह का तो रूप रंग दिखाई पड़ता है, इसकी साइज दिखाई पड़ती है, लेकिन आत्मा जो दिखाई नहीं पड़ती है उसके रूप रंग को हम समझे कैसे, उसकी साइज को हम समझे कैसे? तो कहा आत्मा जो दिखाई नहीं देती है वो अति सूक्ष्म है, वो ज्योति का एक पुंज है और उसी ज्योति में सेवन क्वालिटीज है। जैसे सूर्य होता है, सूर्य भी ज्योति है, पर उस ज्योति में भी कुछ क्वालिटी है, क्या है? गर्मी। चंद्रमा भी एक लाइट है, देता है, उस लाइट में कुछ गुण है, शीतलता। ऐसी आत्मा भी एक ज्योति है, परंतु वो भौतिक ज्योति है, लेकिन आत्मा आध्यात्मिक है, सेल्फ ल्यूमिनस है, स्वयं प्रकाशित है। ये किसी बाह्य प्रकाश को पाकर प्रकाशित नहीं होती है, ये स्वयं प्रकाशित है और वो प्रकाश का मात्र अति सूक्ष्म बिंदु है, एक डॉट है। डॉट भी कहना पड़ रहा है क्योंकि हम डॉट स्मॉलेस्ट उसी को समझते हैं और इसी कहते हैं अति सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म है, ज्योति का एक बिंदु है और उसमें ये सेवन क्वालिटी से उस ज्योति में। कौन सी सेवन क्वालिटी? रिपीट कर ले फिर से। और उसके आधार से मैं कहूंगी मैं आत्मा हूं, लेकिन कैसी आत्मा हूं उस गुण के आधार से कहूंगी मैं आत्मा कैसी हूं। तो मैं आत्मा हूं, कौन सा गुण है? शांति। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। दूसरा गुण क्या बताया? शक्ति। मैं शक्ति स्वरूप आत्मा हूं। तीसरा शुद्धि, पवित्रता। मैं शुद्ध स्वरूप आत्मा हूं, मैं प्योर आत्मा हूं, मैं पवित्र आत्मा हूं। चौथा क्या बताया? सच्चित आनंद बताया ना, सच्चे सुख या खुशी। मैं खुश स्वरूप आत्मा हूं या सुख स्वरूप आत्मा हूं। आई एम अ हैप्पी सोल। फिर क्या? चित, चैतन्य, ज्ञान। मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा हूं। आई एम अ नॉलेजेबल सोल, नॉलेजफुल सोल। फिर क्या बताया? आनंद। मैं आनंद स्वरूप आत्मा हूं, ब्लिसफुल हूं मैं, आई एम अ ब्लिसफुल सोल। और लास्ट प्रेम, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूं, आई एम अ लवफुल सोल। आज हम क्या कहते हैं अपने आप को? मैं गुस्से वाला हूं, बोलते हैं नहीं बोलते हैं? मैं बहुत चिड़चिड़ा व्यक्ति हूँ, मैं बहुत इगोइस्टिक हूँ, जो मैं हूँ उससे हटकर कुछ बोल रहे हैं हम, मैं वो नहीं हूँ, वो तो मेरे अक्वायर्ड लेयर्स हैं, इननेट के ऊपर ये लेयर्स चढ़े हुए हैं। मैं तो कौन हूँ? आत्मा हूँ, शांत स्वरूप, शक्ति स्वरूप, शुद्ध स्वरूप, खुशी का स्वरूप, सुख स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, आनंद स्वरूप, प्रेम स्वरूप। तो जो मैं हूँ उसको स्मृति में बार बार लेकर आए। मेडिकल साइंस भी कहता है शरीर में पानी की जरूरत है तो पानी डालना पड़ेगा ना। तो अगर चाहिए कि डिमांड किसकी है, मुझे खुशी चाहिए, मुझे शांति चाहिए, तो यही तो थॉट देना पड़ेगा ना, यही तो थॉट देना पड़ेगा। मैं जो थॉट दूंगी वही तो एक्सप्रेस होगा। अब मैं कहती हूँ मैं गुस्से वाली हूँ, गुस्से वाली हूँ, तो जितनी गुस्से वाली हूँ आज की डेट में, लेकिन बोलती रहूं गुस्से वाली हूँ, तो मेरे गुस्से का परसेंटेज हर दिन क्या होता जाएगा? बड़ा होता जाएगा। और इसीलिए लोग कहते हैं बहन जी मैं पहले इतना गुस्से वाला नहीं था, लेकिन आजकल बहुत हो गया हूँ, क्योंकि अपने आप को समझा मैं गुस्से वाला हूँ। आप अपने आप को जो है वो समझो, मैं कौन हूँ? आत्मा हूँ। कैसी आत्मा हूँ? स्वयं प्रकाशित आत्मा हूँ। कैसी आत्मा हूँ? ज्योति बिंदु आत्मा हूँ। कैसी आत्मा हूँ? अजर अमर अविनाशी आत्मा हूँ। यही कहा ना आत्मा के लिए कि कोई शस्त्र इसे काट नहीं सकता, जल इसे गीला नहीं कर सकता, वायु इसे सुखा नहीं सकती, अजर अमर अविनाशी। इस शरीर में आज है, लेकिन इस शरीर से पहले भी इसका अस्तित्व था या नहीं था? इस शरीर को छोड़ने के बाद भी इसका अस्तित्व बना रहेगा या नहीं रहेगा? इसी को कहते हैं अजर अमर अविनाशी। जबकि ये शरीर आज है, कल था, माँ बाप ने जब जन्म दिया तब उससे पहले था? नहीं था। आत्मा इससे निकल जाएगी, इसका संस्कार कर दिया जाएगा, फिर रहेगा? नहीं है। तो ये विनाशी है, जड़ है, और आत्मा अविनाशी है, चैतन्य है। अब जड़ और चैतन्य में क्या अंतर होता है? जड़ और चैतन्य में क्या अंतर होता है? लिविंग और नॉन लिविंग में क्या अंतर होता है? बोलिए, लिविंग और नॉन लिविंग में अंतर क्या है? एक होता है नॉन लिविंग, एक होता है लिविंग बीइंग। नॉन लिविंग जैसे जड़ चीजें है, माइक है, ये ग्लास है, ये नॉन लिविंग। लिविंग माना जैसे पेड़ है, उनको लिविंग बीइंग थिंग बोलते हैं। लेकिन इंसान के लिए कौन सा शब्द यूज होता है? बीइंग शब्द यूज होता है, थिंग नहीं। तो क्या अंतर है जड़ में और चैतन्य में? जो चैतन्य की निशानी है, क्योंकि कई बार लोग कहते पेड़ भी तो चैतन्य है। आप कहते हो मांस मरीज मच्छी नहीं खाओ, फिर पेड़ को क्यों खाते? उसमें भी तो जीवन है, परंतु वो लिविंग थिंग है, लिविंग बीइंग नहीं है। अंतर होता है बीइंग में। क्या निशानी होती है उसकी? बीइंग की तीन निशानियां होती है बीइंग की। उसके पास मन होता है, उसके पास बुद्धि होती है, उसके पास संस्कार होते हैं। ये है बीइंग की निशानी। कहते हैं ना ह्यूमन बीइंग, तो ह्यूमन शब्द ह्यूमस से निकला है, और वो ह्यूमन शब्द इस माटी से बने पुतले के लिए है, और बीइंग शब्द उस आत्मा के लिए है जो चैतन्य है, जो अविनाशी है, जो अति सूक्ष्म है, जो इन जड़ चक्षुओं से देखी नहीं जा सकती है, उस आत्मा के लिए बीइंग शब्द है। लेकिन देखा जाए तो पूरा जीवन बीइंग में नहीं, डूइंग में चला जा रहा है। हम कर रहे हैं, कर रहे हैं, कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? शांति पाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, प्रेम पाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, खुशी पाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, आनंद पाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, प्रेम पाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। लेकिन हम तो हैं प्रेम, हम तो है प्रेम स्वरूप, हम तो है आनंद स्वरूप, उसमें टिकते नहीं है क्योंकि उसका पता नहीं है। और इसीलिए मैं कौन हूं की पहली हल करना बहुत जरूरी है। सदियों से इस पहली पर काम किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि जब तक ये पहली हल नहीं होगी, समस्याओं का अंत नहीं होगा। और इस पहली को आज तक कोई ठीक से बुझा नहीं पाया, लेकिन जब परमात्मा आते हैं, परमात्मा ही आकर के इस पहली का हल सुनाते हैं, तो परमात्मा आकर कहते हैं, बच्चों तुम देह नहीं, तुम आत्मा हो। बच्चों तुम आत्मा ज्योतिर्बिंदु हो, अति सूक्ष्म हो, अजर अमर अविनाशी हो, तुम प्रेम स्वरूप हो, शांत स्वरूप हो, ज्ञान स्वरूप हो, आनंद स्वरूप हो, शक्ति स्वरूप हो, शुद्ध स्वरूप हो। ये परमात्मा आकर हमें जागृति दिलाता है। है तो सही हम, पर अक्वायर्ड लेयर्स के अंदर सब कुछ दब गया था, भूल गए थे, भुलाई हुई चीज को वापस परमात्मा के स्मृति दिलाते हैं और कहते हैं, अब इस सोल कॉन्शियस के साथ जीवन जियो। क्योंकि आए जीवन जियो मतलब इस वर्ल्ड ड्रामा में, इस स्टेज पर हम एक्टिंग करने के लिए आए थे। हर एक्ट करने से पहले हर बार अपनी चेकिंग कर लो, मेरा फोकस कहाँ है, ये स्व आत्मा का शरीर में स्थान कहाँ है, तो कहाँ जहां पर हम तिलक लगाते हैं, भ्रुकुटी जिसे कहते हैं, दो आंखों के मध्य मस्तक के बीचों बीच ललाट पर जो स्थान है, ये आत्मा की सरफेस मार्किंग है। लेकिन आत्मा तो इसके भीतर, यहां से 2.5 इंच अंदर और ऊपर से नीचे 2.5 इंच, जहां पर ये दो लाइनें, अगर यहां से अंदर एक लाइन खींचे और यहां से ऊपर से नीचे एक लाइन डालें, तो जहां पर ये दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट होगी, वो जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा, वो वास्तव में हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड के बीच का स्थान है, जिसको ही मेडिकल साइंस भी कहता है स्थान है आत्मा का, और उसकी सरफेस मार्किंग यहां पर। और इसीलिए मंदिरों में जाते हैं तो पहला काम करते हैं, पूजा आरंभ करने से भी पहले तिलक लगाते हैं, अर्थात जब पूजा भी करें पहले कॉन्शियस को चेक कर लो कि मैं पूजा करने वाला कौन। ये शरीर पूजा नहीं करेगा, कौन करेगी पूजा? आत्मा। दिया कौन जलाएगा? आत्मा। और वो दिया जलाने का अर्थ क्या था? ये आत्मा रूपी दीपक जगाओ। नारियल कौन फोड़ेगा? आत्मा। और उस नारियल फोड़ने का अर्थ क्या था? इस देह भान को तोड़ो, अर्थात इससे फोकस हटाओ और फोकस यहां पर करो। तो ये जो नारियल के अंदर जो गिरी है, जो न्यूट्रिशियस होती है, जो डेलिशियस होती है, जो ताकतवर्धक होती है, जो शक्तिवर्धक होती है, जिसको खाने से ताकत आएगी, शक्ति आएगी, तो यहां पर जब ध्यान फोकस करेंगे और ये थॉट्स क्रिएट करेंगे, अपने आप को स्मृति दिलाएंगे मैं प्रेम स्वरूप हूं, तो खुद भी अनुभव करेंगे और चारों तरफ भी वो वाइब्रेशन फैलाएंगे। तो कहा चैतन्य की निशानी है थॉट क्रिएट करने की पावर है उसके पास। तो आत्मा के पास 3 फैकल्टीज हैं, मन बुद्धि और संस्कार। मन से आत्मा सोचती है, या यूं कहें आत्मा जब सोचती है तो उसको मन नाम दे दिया जाता है। और सोच कितनी चलती है दिन भर में? कितनी सोच चलती है दिन भर में? हाँ, साइकोलॉजी कहती है हजारों की संख्या में। और हजार भी कितने? 1, 2, 3, 4 नहीं, 60,000। इतने थॉट्स ह्यूमन माइंड क्रिएट करता है एक दिन में, 24 घंटे का दिन होता है। लेकिन क्या हर थॉट प्रैक्टिकल में आ जाता है क्या? तो ये हर थॉट प्रैक्टिकल में क्यों नहीं आता है? क्योंकि उसके बाद एक दूसरी फैकल्टी है बुद्धि। कि मन जो भी थॉट क्रिएट करेगा बुद्धि उसको फिल्टर करेगी एक्ट में लाने लायक है भी या नहीं है. बुद्धि डिसाइडिंग फैकल्टी है, डिसीजन मेकिंग फैकल्टी है आत्मा के पास, कि मन के द्वारा जो इतने सारे थॉट क्रिएट किए गए हैं क्या इसको कौन से वाले को प्रैक्टिकल में लाना उचित होगा. तो बुद्धि तय करती है और बुद्धि तय किस आधार से करेगी, बुद्धि के पास जो ज्ञान होगा. अगर मैं आपसे पूछूं दो और दो कितने होते हैं तो आंसर क्या आएगा, बोलो दो और दो कितने होते हैं. अगर मैं कहूं दो और दो पांच होते तो आप मुझे क्या कहेंगे, आप मुझे करेक्ट करेंगे कि बहन जी आप गलत बोल रहे हैं, दो और दो पांच नहीं होते हैं, दो और दो चार होते हैं. और मान लो मैंने एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है, लेकिन मैं पूछूंगी आप किस आधार से कह रहे हैं कि दो और दो चार होते हैं, दो और दो पांच नहीं होते हैं. कोई आधार है ना आपका कहने का, क्या आधार है, जो हमें मैथमेटिक्स में पढ़ाया गया. तो एक ज्ञान अंदर में बुद्धि में स्टोर है, जिस ज्ञान को यूज करके बुद्धि डिसाइड करती है. अब जैसा ज्ञान भरा होगा वैसे ही तो डिसाइड करेगी वो. इसीलिए क्या कहते हैं, मां का पढ़ा हुआ पढ़ा लिखा होना जरूरी है, क्योंकि मां के पास ही तो बच्चा सारा दिन होता है, क्योंकि मां ने ही तो उसको सिखाना है. तो ऐसे ही बुद्धि मां है, जिसकी मन बच्चे की, मन बच्चा है और बुद्धि उसकी मां है. तो इस मां के पास बहुत अच्छा श्रेष्ठ ज्ञान हो तब तो मन को श्रेष्ठ गाइडेंस दे सकती है. और इसीलिए कहा अध्यात्म, मैं कौन हूं ये सच्चा ज्ञान इस बुद्धि में जब स्टोर करेंगे तब ये बुद्धि इस मन को पल पल गाइड करेगी कि ये जो तू करने जा रहा है ये राइट है ये राइट नहीं है. और इसलिए उसके आधार से वो डिसीजन वैसा ही देगी कि ये करना है और ये नहीं करना है. और जिस चीज के लिए डिसीजन ले लिया जाएगा उसको एक्टिंग में लाने के लिए कर्मेंद्रियों के द्वारा कर्म किया जाएगा. और जब कर्म करेगी आत्मा तो करने वाली कर्म कौन है, आत्मा ही कर्म करेगी. लेकिन आत्मा जब भी कोई कर्म करेगी तो उस कर्म की रिकॉर्डिंग भी अपने पास कर लेगी कि मैंने ये कर्म किया है, रिकॉर्डिंग भी कर लेती है वो. और जिसको ही कहते हैं संस्कार, जो कार्य हम बार बार करते हैं वो संस्कार का रूप धारण कर लेता है. और जब कोई संस्कार का रूप धारण कर लेता है वहां सोच चलाने की, बुद्धि को चलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, अपने आप संस्कार के वश हो जाता है. तो बुद्धि में गलत ज्ञान था कि मैं देह हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं सीनियर हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं. उसके आधार से हमने सोचा ये मेरा काम नहीं करता तो मुझे गुस्सा करना है, मुझे इसको डांटना है, इसने मुझे ऐसा क्यों बोला, इसने मेरा अपमान किया, मैं इसको अभी दिखाता हूं. ये गलत ज्ञान भर के रख दिया और वो गलत ज्ञान बहुत लंबे काल से हमने भरा हुआ है. और इसीलिए आज हम तुरंत कहते हैं, हम कहेंगे किसी को भाई गुस्सा क्यों किया, उसने किया ही ऐसा तो मन के अंदर वो प्रोग्रामिंग करके रख दी है जब कोई गलत करे तो मैंने गुस्सा करना है. तो अब वो सोचता भी नहीं समझता भी नहीं और कर देता है. किसी भी गुस्से वाले व्यक्ति से पूछो बोलो ना आप बहुत गुस्सा करते हो, कभी स्वीकार नहीं करता है क्योंकि वो सोच समझ के थोड़ी करता है, संस्कार के वश करता है. उसने सोचा भी नहीं समझा भी नहीं कि गुस्सा करना है पर कर लिया संस्कार के वश, तो वो कैसे स्वीकार करे भाई, मैं सोचू मैं समझू फिर करूं तो मैं मानू कि हाँ मैंने सोचा था गुस्सा करूं, पर बिना सोचे समझे हो गया है तो कहता है नहीं मैं कोई गुस्सा नहीं करता हूं. तो संस्कार वो चीज है कि जब एक बार वो संस्कार बन जाएगा सोचने समझने की मार्जिन खत्म. और इसलिए ये जो गलत संस्कार हम बना दिए, बनाने वाले भी हम थे, और इसकी जगह पर अभी श्रेष्ठ दिव्य डिवाइन संस्कार बनाने की आवश्यकता है. और वो डिवाइन संस्कार बनाना माना ही मुझ आत्मा की जो सेवन क्वालिटीज है उन सेवन क्वालिटीज को संस्कारों में भर देना है. और उन सेवन क्वालिटीज को संस्कार का रूप बना देना मतलब ही उसी को बार 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 हर एक्ट में यूज करना। जैसे हर एक्ट में बार बार गुस्सा यूज किया तो गुस्से का संस्कार बन गया, ऐसे हर एक्ट करते समय मैं पूरे होश हवास में रहूं कि मैं आत्मा हूं, एक्टिंग करने वाली मैं आत्मा हूं और मुझे मेरा जो अपना गुण है प्रेम का, खुशी का, उसको यूज करके इस एक्ट में आना है। तब ये मेरे सातों गुण एक संस्कार का रूप लेंगे और तब एक बार जब संस्कार का रूप ले लेंगे तो जैसे गुस्सा भी बिना सोचे समझे आ रहा है, ऐसे शांति भी बिना सोचे समझे, कितनी भी परिस्थिति विकराल क्यों नहीं हो, शांति से हैंडल करेंगे। सामने वाला व्यक्ति कैसा भी क्यों नहीं हो, प्रेम से डील करेंगे। कितनी ही परिस्थिति दिल को तोड़ने वाली क्यों नहीं हो, शक्ति धीरज रख के उसको हैंडल करेंगे, क्योंकि मैंने संस्कार बना दिया मैं कौन हूं, मैं शक्तिशाली आत्मा हूं। परिस्थितियां कितने भी दुख अनुभव कराने वाली क्यों हूं, लेकिन मैंने संस्कार बना लिया मैं कौन हूं, आई एम अ हैप्पी सोल, आई एम अ ब्लिसफुल सोल। तो दुखद परिस्थितियों में भी अपने आप को मैं आनंद से भरपूर रख सकती हूं, खुशी से भरपूर रख सकती हूं। मुझे खुशी ढूंढने की जरूरत नहीं है, लेकिन खुश रहकर हर एक्ट करना है। मुझे आनंद को खोजने की जरूरत नहीं है, लेकिन आनंदित रहकर हर कर्म करना, इसको कहते हैं ह्यूमन बीइंग। बी वो बनकर, वो रहकर आप कर्म करो, पर हम वैसा जो मैं आत्मा हूं, जो मेरी क्वालिटी से उसमें रहे बिना, मैं जो नहीं हूं उसको समझती हूं और उसके आधार से जो गलत संस्कार तैयार किए उनको यूज करती हूं, और इसलिए जीवन दिन ब दिन बिगड़ती चली जा रही है। तो बुद्धि में जरूरत है सत्य ज्ञान को भरने की। तो आज हमने सत्य ज्ञान समझा स्वयं के प्रति, आत्मा के प्रति। ये शरीर क्या है, स्व आत्मा का रथ है, और इस रथ के लिए ही कर रहे हम सब कुछ। इसीलिए लोग कहते हैं कि लोग स्वार्थी हो गए हैं। स्वार्थी का मतलब सिर्फ इस देह को फोकस करके जो कर रहा है, और इस देह को फोकस करके जो करेगा, जो स्वार्थी रहेगा, वो दूसरे का भला कभी सोचेगा ही नहीं। और इसलिए हमें सही संदर्भों में हमें सोचना, ये स्व, ये आत्मा स्व है, ये उसका रथ है। स्व को फोकस रखकर हर कर्म करना है, न कि स्व के रथ को फोकस करके कर्म करना है। तो चलिए रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि बुद्धि में ये ज्ञान हमें स्टोर करके रखना है। क्योंकि बुद्धि में ज्ञान स्टोर होगा तो फिर मन जब कुछ भी कहेगा तो बुद्धि इस ज्ञान के आधार से उसको करने के लिए मार्गदर्शन दे सकेगी। राइट मार्गदर्शन देने में बुद्धि समर्थ होगी तो फिर मन उसका कहना मानेगा, और फिर वैसा करेंगे तो अच्छे संस्कारों का, दैवी संस्कारों का निर्माण होगा, स्वयं का जीवन दैवी बन जाएगा, ये संसार दैवी दुनिया बन जाएगा। यही कहा, आत्मचिंतन से होगा आत्म परिवर्तन। लेकिन आत्मचिंतन हम कर सके उसके लिए आत्मा की नॉलेज बुद्धि में स्टोर हो, और ये बुद्धि में जो नॉलेज स्टोर करेंगे इसका चिंतन दिन भर करें। क्योंकि दिन भर तो हम कर्म करेंगे ना, तो हर बार मुझे अपना फोकस शिफ्ट करना है फ्रॉम बॉडी टू सोल, फ्रॉम रोल टू सोल। इस बॉडी के आधार से जो गलत संस्कार तैयार किए उन गलत संस्कारों से राइट संस्कारों की तरफ मुझे शिफ्ट करना है अपने आप को। एवरी टाइम जब भी कुछ कर्म कर रही हूं, जब भी कोई रोल प्ले कर रही हूं, चेक कर लेना है भीतर कौन सी कॉन्शियस है, मैं आत्मा। आत्मा, जब मैं अपने आप को आत्मा समझूंगी तब मैं अन्य को भी आत्मा समझ सकूंगी, अन्यथा भेदभाव है, क्योंकि रोल तो डिफरेंट होंगे। कोई ऑफिसर है, कोई क्लर्क है, कोई जूनियर है, कोई सीनियर है, कोई हाई पोजीशन वाला है, कोई लो पोजीशन वाला है, कोई गरीब है, कोई अमीर है, कोई काला है, कोई गोरा है, कोई स्त्री है, कोई पुरुष है, कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, लेकिन वो सब देह के आधार से अक्वायर किया हुआ है, लेकिन मैं तो आत्मा हूं और हर अगला व्यक्ति भी एक आत्मा है। और आत्मा आत्मा होने के नाते हम सब आपस में भाई भाई हैं, एक पिता की संतान है। तो वो फिर परिवार की भासना, वसुधैव कुटुंबकम। इसलिए कहा सनातन संस्कृति का आधार अध्यात्म। कौन सी संस्कृति सनातन है? दैवी संस्कृति सनातन है ना, तो दिव्यता लानी पड़ेगी ना, तो दिव्य जो शक्ति है आत्मा उस पर फोकस करना पड़ेगा ना। तो चलिए रिवाइज कर लेते हैं अपने आत्मज्ञान को, स्व के संबंधित ज्ञान को। तो पहला, मैं देह नहीं हूं, मैं देह से अलग एक आत्मा हूं। देह जड़ है, मैं आत्मा चैतन्य हूं। जड़ तब तक एक्ट कर सकता है जब आत्मा उसमें है, आत्मा उससे करा रही है। ये मुख बोल रहा है क्योंकि आत्मा प्रेजेंट है इस शरीर में, लेकिन इस शरीर से यहां से आत्मा निकल जाए मुख बोलना बंद कर देगा। मुख की उपस्थिति रहेगी, प्रेजेंस रहेगा, लेकिन मुख बोलेगा नहीं। आंखों की उपस्थिति रहेगी पर आंख देखेगी नहीं। कानों की उपस्थिति रहेगी पर कान सुनेगा नहीं, क्योंकि आत्मा जो इसमें थी, जो इस मुख से बुलवा रही थी, वो निकल गई है। तो मैं चैतन्य शक्ति हूं, और मुझ चैतन्य शक्ति की पहचान कि मेरे पास तीन शक्ति फैकल्टीज हैं, मन, बुद्धि और संस्कार। मन से थॉट क्रिएट करती हूं, मन हजारों थॉट क्रिएट कर लेता है पर हर थॉट को हम एक्ट में नहीं लाते हैं, उसी थॉट को एक्ट में लाते हैं जो बुद्धि करने के लिए कहती है। और जब कोई थॉट को एक्शन में ला लेते हैं, कर्म कर लेते हैं, तो कर्म के आधार से जिस कर्म को मैंने बार बार रिपीट किया वो संस्कार के रूप में आत्मा में रिकॉर्ड हो जाता है। इसीलिए देखो, अभी बच्चे ने जन्म लिया है तो कोई बच्चा गोल्डन स्पून इन माउथ होता है, जन्मते ही सब प्रकार की सुख सुविधाएं, तो कहते बहुत पुण्य आत्मा आई है। और एक बच्चा जन्मा क्या है, उसको पूछने के लिए कोई नहीं है, उसको यूं फेंक दिया गया है, क्या कहते हैं, बेचारा बेचारा कहते हैं ना, कि शायद पुण्य का खाता उसका जमा नहीं है। तभी कहा आत्मा पहले भी थी, क्योंकि अभी तो बच्चे के रूप में आया, लेकिन हमने क्या कहा, पुण्य कमा के लाया, मतलब पहले भी थी। कौन कमा के लाया, शरीर या आत्मा? आत्मा। तो आत्मा जब देह छोड़ती है तो अपने साथ किए हुए कर्म और संस्कार साथ में लेके जाती है। तो ये कर्म और संस्कारों पर हमें बहुत ध्यान देना है, और उसके लिए बुद्धि में ये ज्ञान स्टोर करना है। तो कर्म जब भी करूं तो आत्मा के पास फिर कहते 7 क्वालिटीज हैं। रिपीट कर लो फिर से, शांति, शक्ति, शुद्धि। शांति, शक्ति, शुद्धि, बोलिए सभी। कितनी हो गई क्वालिटीज? 3। अगली 3 बोलो, सत, चित, आनंद, मतलब ही सुख, ज्ञान, आनंद। क्लियर? और लास्ट, प्रेम। ये मेरी 7 क्वालिटीज है। तो आज के बाद मुझे ये नहीं कहना है आप मेरे से प्यार से बात करो ना, लेकिन मुझे प्यार भरी स्थिति में रहकर हर एक के साथ व्यवहार करना है। आज के बाद मुझे ये नहीं कहना है मुझे शांति चाहिए, मैं हूँ शांत स्वरूप। शांत स्वरूप रहकर हर चीज शांति से करनी है। आज के बाद मुझे ये नहीं कहना है मुझे आनंद चाहिए, मैं हूँ आनंद स्वरूप। उस आनंद स्वरूप में टिककर अपने रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फुलफिल करना है। आज के बाद मुझे ये नहीं कहना है मुझे शक्ति चाहिए, मैं हूँ शक्ति स्वरूप। और कहाँ से आई है आत्मा? कहाँ से आई है आत्मा? कहाँ से आई है आत्मा? तो कहते हैं भगवान के घर से आए हैं। तो भगवान का घर किधर है? तो किधर ध्यान जाता है? ऊपर। तो ये चित्र दिखाया है, ये तीन हिस्से हैं इस चित्र में। एक हिस्सा जो नीले रंग से दिखाया गया है, जिसमें एक ग्लोब दिखाया गया है, सूर्य चांद सितारे, इसको कहते हैं साकारी दुनिया, मनुष्य लोक। और उसके ऊपर तीन पट्टे दिखाई दे रहे हैं, इसको कहते हैं आकारी दुनिया, सूक्ष्म लोक, फरिश्तों की दुनिया, ब्रह्मा विष्णु महेश पुरी। इसकी डिटेल तो आपको बाद में समझ में आएगी। और पहले वाले की तो पता है आपको, मनुष्य की दुनिया जो है मनुष्य लोक है, जो स्थूल जगत है। दूसरे वाले की डिटेल अभी नहीं, बाद में। और तीसरा जो पट्टा है गोल्डन रेड वाला, बीच वाला थोड़ा सा व्हाइटिश, और उसके ऊपर वाला गोल्डन रेड, जहां ऊपर में एक बड़ी डॉट और फिर छोटी छोटी डॉट अरेंज दिखाई है। ये दुनिया है आत्माओं की दुनिया। वो जो बड़ा बिंदु दिखाया गया है वो परमात्मा को दिखाया गया है, और बाकी सब आत्माएं। तो आत्माओं का घर और पिता परमात्मा का घर, क्योंकि संतान है उसकी। और इसलिए कहने में आया हम भगवान के घर से आए हैं, भगवान के घर जाना है। ऊपर से आए हैं, ऊपर जाना है। तो ऊपर जब जाएंगे तो यहाँ का कुछ भी साथ में लेकर जाएंगे? ऊपर से जब नीचे आए यहाँ का कुछ भी साथ में लेकर आए थे? नहीं, यहाँ आने के बाद ही यहाँ से लिया, और यहाँ जाने से पहले यहीं देकर जाना है। और इसलिए इस देह और देह से संबंधित जो भी वस्तुएं हैं इनसे अपने आप को डिटैच करने की आवश्यकता है। अगर डिटैच नहीं होते हैं, अटैच्ड रहते हैं, तो फिर फोकस को यहाँ नहीं ला सकते हैं। और जब यहाँ पर फोकस को नहीं ला सकते हैं तो उन सेवन क्वालिटीज को अनुभव नहीं कर सकते हैं। और उस परम धाम में इसको जब लेकर जा नहीं जा सकते हैं, लेकिन नियति जब इसको छुटवाएगी तो अंतमति सो गति कही जाती है। अंत में हम दुख दर्द में होंगे। अटैचमेंट जिससे होता है वो छूटता है तो दर्द होता है, लेकिन अटैचमेंट जिससे नहीं छूटे ना छूटे क्या फर्क पड़ता है, हम अपने मौज में रहते हैं। तो ये है कि मैं कौन हूं, कहां से आई हूं? इस घर से, आत्माओं की दुनिया से। इसी को कहा जाता है परम धाम, कि सबसे ऊंचा धाम है, इससे ऊंचा और कोई नहीं है, कि जहां परम शक्ति परमात्मा विराजमान रहती है। इसी को कहते हैं शांति धाम, क्योंकि यहां पर सिर्फ और सिर्फ शांति है। इसी को कहते हैं ब्रह्म लोक, क्योंकि ये जो परम धाम बना है ब्रह्म तत्व से बना हुआ है। तो ब्रह्म लोक, जैसे ये साकारी दुनिया पंच तत्वों से बनी है, लेकिन वो पंच तत्वों से अलग एक छठा तत्व है जिसको ब्रह्म महतत्व कहते हैं, उससे बनी हुई है, तो उसे कहते हैं ब्रह्म लोक। वो परलोक कहलाया जाता है क्योंकि इस दुनिया से परे है। वो मुक्ति धाम कहलाया जाता है क्योंकि वहां पर आत्मा देह और देह के हर चीज जो उसने हासिल की है उससे वो मुक्त है। इसको निर्वाण धाम भी कहते हैं क्योंकि यहाँ वाणी से हम परे हैं, कहते हैं ना पार निर्वाण चला गया, वाणी से परे। इसको सच खंड कहते हैं कि जहां सिर्फ और सिर्फ सत्य है, परमात्मा स्वयं अपने आप में सत्य है और आत्माएं भी अविनाशी सत्य है, सच खंड है। इसी को हम याद करते हैं। तो एक्टर अगर सदा ही रंगमंच पर होगा, घर विजिट नहीं करेगा, आराम नहीं करेगा, तो अगले दिन की एक्टिंग अच्छी कर पाएगा? और इसीलिए जब हमें पता चल गया है कि मैं एक्टर हूं, मैंने ये वस्त्र पहना है शरीर रूपी एक्टिंग करने के लिए, तो एक्ट जरूर करें, लेकिन फिर इससे डिटैच होके अपने घर की भी यात्रा अवश्य करें, जाके वहां पर विश्राम का अनुभव पिता परमात्मा की गोद में करें। तो चलिए चंद पलों के लिए जो अभी हमने सुना उसको कमेंट्री के माध्यम से अपने आप को देंगे, ताकि हमें अभ्यास क्या करना है वो हमें पता चल जाए, और जिस अभ्यास को हमें बार बार अपने जीवन में लाकर उन सात गुणों की अनुभूति को बढ़ाना है और अपने को सोल कॉन्शियस में रखना है, और सब कुछ जिससे ठीक हो जाएगा। कहा ना, मैं कौन हूं कि पहली को हल करो, सारी सफरिंग्स खत्म हो जाएगी, सारे ईगो मिट जाएंगे, सफरिंग की जड़ खत्म, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो सब तरफ से सीधे बैठ जाएं, बिल्कुल स्ट्रेट, आपके हाथ में जो कुछ भी हो साइड कर लें, सबसे अपने आप को डिटैच कर लें, क्योंकि सोल कॉन्शियस होने के लिए हमें जब बॉडी से ही डिटैच होना है, तो बॉडी के द्वारा जो पकड़ी हुई चीज है उनसे भी डिटैच हो जाएं। सब तरफ से ध्यान हटाकर मस्तक के बीचों बीच केंद्रित करें। और वहां देखें इस शरीर को चलाने वाली शक्ति आत्मा ज्योतिर्बिंदु के रूप में विराजमान। अति सूक्ष्म ज्योतिर्बिंदु ये मैं आत्मा हूं। मैं दिव्य हूं, मैं शरीर की मालिक हूं, मैं चैतन्य शक्ति हूं, अजर अमर अविनाशी हूं, मुझ चैतन्य की उपस्थिति के कारण ही ये शरीर जिंदा है, क्योंकि मैं जीवन की ऊर्जा हूं, और इसलिए इस शरीर की मैं कंट्रोलर हूं, मालिक हूं। मैं आत्मा ज्योतिपुंज मस्तक के बीचों बीच ऐसे ही चमक रही हूं जैसे आसमान में सितारे चमकते हैं। देखे इस चमकती हुई आत्मा को, सितारे को, उसमें से निकलने वाले प्रकाश किरणों को। मैं स्वप्रकाशित आत्मा हूं। सेवन क्वालिटीज का पुंज हूँ, मैं शांत स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ, शुद्ध स्वरूप हूँ। मैं सुख स्वरूप हूँ, ज्ञान स्वरूप हूँ, आनंद स्वरूप हूँ। मैं प्रेम स्वरूप हूँ। मैं आत्मा इन क्वालिटीज के साथ मस्तक के बीचों बीच विराजमान हूँ इस शरीर में, इस शरीर के द्वारा कर्म करती हूँ। आज दिन तक मेरा फोकस स्वयं पर नहीं था, बॉडी पर था, और इसलिए मेरे कर्म में ये सेवन क्वालिटीज प्रवाहित नहीं हुई। लेकिन अब मुझे हर कर्म करते समय स्वयं पर फोकस रखना है कि कर्म करने वाली मैं आत्मा हूँ। मैं आत्मा इस देह से, देह की इंद्रियों से कर्म कराती हूँ। मुझे आत्मा के पास इस देह की इंद्रियों से कर्म कराने के लिए भी सूक्ष्म इंद्रियां हैं, जिसको ही कहा तीन फैकल्टीज, मन बुद्धि संस्कार। मैं मन के द्वारा सोचती हूँ, मन के पास पोटेंशियल है हजारों विचार क्रिएट करने की, परंतु कौन से विचार को प्रैक्टिकल में लाना है या नहीं लाना है, ये पोटेंशियल उसके पास नहीं है। ये पोटेंशियल है बुद्धि के पास। बुद्धि डिसीजन मेकिंग फैकल्टी है। बुद्धि में जैसा ज्ञान स्टोर होता है वैसे ही डिसीजन ले पाती है। के बाद मैं आत्मा उस विचार को कर्म में लाती हूँ, और जो कर्म मैं आत्मा करती हूँ उस हर कर्म की छाप आती, और जो कर्म बार बार हो जाते हैं उसकी रिकॉर्डिंग एक संस्कार कहलाती है। मन बुद्धि संस्कार मुझे सत्य ज्ञान के आधार से इनेट अर्थात आत्मा पे भी आत्मा की क्वालिटीज को हर कर्म में रेडिएट करना है, जिससे मेरा हर कर्म श्रेष्ठ होगा, दिव्य होगा, और श्रेष्ठ कर्मों से मैं अपने जीवन को श्रेष्ठ बना लूंगी। मैं आत्मा इस शरीर भीतर किंतु शरीर से अलग, अब मैं शरीर के अवेयरनेस में आकर कर्म क्षेत्र पर उतर रही हूँ कि कर्म क्षेत्र में मुझे स्मृति रहे कि मैं आत्मा हूँ, और सेवन क्वालिटीज रेडिएट करते हुए हर कर्म करना है। मैं आत्मा असल में इस ड्रामा में, वर्ल्ड ड्रामा में, परमधाम घर से आई हूँ, ये मुझे ना भूले। उस घर में जाकर मुझे विश्राम है। बात से कर्म में एक नई स्फूर्ति, एक नई ताजगी होती है। तो एक बार कर्म क्षेत्र पर मैं उतरूं उससे पहले चलिए उस परम धाम में, देखे आत्मा भ्रुकुटी से निकलकर ऊपर की ओर उड़ान भरती है और उड़ते उड़ते चांद सितारों को पार करके सूक्ष्म वतन को भी पार करके परम धाम घर में पहुंच गई हूं मैं, जहां चारों तरफ गोल्डन रेड लाइट है, जहां शांति ही शांति है। ये विश्राम की दुनिया है, ये स्वीट साइलेंस की दुनिया है। स्वीट साइलेंस को अपने भीतर अनुभव करें। स्वीट साइलेंस की अनुभूति करके परम पिता के इस घर से मैं नीचे वर्ल्ड ड्रामा स्टेज की ओर उतरती हूँ। देखें अपने आप को, आत्मा चमकती हुई नीचे उतर रही है और उतरते उतरते नीचे आते आते इस शरीर में भ्रुकुटी सिंहासन पर विराजमान एक नई स्फूर्ति और ताजगी के साथ वर्ल्ड ड्रामा स्टेज पर कर्म करने के लिए तैयार। ओम शांति शांति शांति।